السلام علیکم.
کیا خبر ہے میر دائی؟
خدا کا شکر ہے سب کچھ صحیح جا رہا ہے.
حیران نہیں ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں.
میں کیا کہوں، میں آپ کے کام میں دخل نہیں دیتا.
یہاں سے 200-300 کلومیٹر دور ایک پیٹرو کیمیکل ریفائنری بنانے کا فیصلہ ہوا ہے،
تو اس کا یہاں سے کیا تعلق؟
تعلق یہ ہے کہ پائپ بچھانے کی وجہ سے ان زمینوں کی قیمت بڑھ جائے گی.
لیکن یہ زمینیں تو لوگوں کی ہیں خزائی صاحب.
کیا زمین مالکان جانتے ہیں کہ یہاں آئل ریفائنری بننے والی ہے؟
ان چیزوں کو صرف آپ ہی جانتے ہیں.
میں اپنی دوستی کے احترام کی خاطر تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، ان سے چند ایکڑ زمینیں خرید لو.
اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے.
میں سفارش کروں گا کہ تمہیں لون مل جائے. یہ علاقہ مستقبل میں ہائی وے ٹرکوں اور گوداموں کا مرکز والا ہے. اس وقت تم میرے مرحومین کو دعائیں دو گے.
اگر آپ اجازت دیں تو پہلے اس شروع کیے ہوئے پروجیکٹ کو تمام کر دیں.
تمہاری غلطی ہے جو لمبا کر دیا.
اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو لمبا نہ ہوتا.
کیا بات کر رہے ہو میرزائی؟ اگر یہ زمینیں آزاد نہ ہوئیں تو ڈیم اور دوسرے پروجیکٹ برباد ہو جائیں گے. جو پلان میرے ذہن میں، اگر اس کے لیے راستہ نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں.
عرض کیا ہے کہ رکاوٹ ہے، یہ نہیں کہا کہ منتفی ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک دو دنوں میں حاجی صاحب زمینوں کو خالی کر دیں گے، مدرسے کو بھی.
بہرحال خدا کے بعد مجھے تم سے امید ہے، میرے پروجیکٹ کو ناکام مت ہونے دینا.
آپ بے فکر رہیں.
ان شہیدی صاحب کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور کر دو.
میں اپنی پوری کوشش کروں گا.
جب تک لوگ شہیدی صاحب کی باتوں پر چلیں گے ہمارا کام آگے نہیں بڑھے گا. ان کو کونے میں بٹھا دو تاکہ مناجات کر کریں.
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں.
جو تم سوچ رہے ہو اس پر جلدی عمل کرو.
کیا کھنڈر خرید رہے ہو؟ کتنی کم رقم لکھی ہے دیکھیے تو ذرا حاجی صاحب.
یہ حاجی صاحب کے گھر کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہو سکتی ہے جو لگائی ہے.
احمد علی صاحب، آپ نے گاڑی میں مجھ سے کچھ وعدے کیے تھے.
حاجی صاحب، اگر یہ معلوم ہوتا مجھے کہ یہ اس گھر کو اس طرح آگ لگانے والا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ لگا دیتا. آپ ذرا دیکھیے تو آخر کیا لکھ رہے ہیں یہ.
حاجی صاحب، یہ گھر آپ سے ہی تعلق رکھتا ہے. آپ کا راضی ہونا ہمارے لیے شرط ہے. اگر آپ راضی ہیں تو میں کام جاری
رکھوں. میں راضی ہوں، آپ جاری رکھیے، جاری رکھیے.
جیسی آپ کی مرضی.
مبارک ہو حاجی صاحب. یہ لیجیے حاجی صاحب، یہاں دستخط کیجیے.
آپ خود بھی تو راضی ہیں نا انشاءاللہ. میری خاطر نقصان مت اٹھا لیجیے گا.
آپ کی عنایت ہے حاجی صاحب. آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے.
آپ کیسی باتیں کرتے ہیں حاجی صاحب. ان کی تو دلی خواہش تھی کہ سودا اس طرح سے انجام پائے.
لا الہ الا اللہ.
چاہو تو انگوٹھی نکال کر گھما کے دیکھ لو کس طرف رکتی ہے، کہیں سودے میں نقصان نہ ہو جائے تمہیں.
نہیں صاحب، جب سے حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ فال اور انگوٹھی کے چکر میں مت پڑو، میں نے بھی ان پر بالکل کراس لگا دیا.
اچھا تو یہ بات ہے.
کہاں دستخط کرنے ہوں گے؟
حاجی صاحب یہاں دستخط کریں، دونوں پیپرز پر.
جی
حاجی صاحب معاف کیجیے گا، اس سے نہیں اس سے. یہ کالا ہے منحوسیت لاتا ہے.
اچھا کیا آپ نے ابھی خود ہی نہیں کہا کہ ان خرافات اور فضولیات کو آپ چھوڑ چکے ہیں؟
شرمندہ ہوں حاجی صاحب، یہ ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے. یہ رہی گھر کے قیمت کی باقی کی رقم اور وہ چیک بھی جو پہلے آپ کو دے چکا ہوں.
بہت شکریہ. بس یاد رہے کہ حاجی مہدوی صاحب اور ان کی بیگم چند دنوں تک اس گھر میں ہمارے مہمان ہیں جب تک کسی اور جگہ کا انتظام نہ ہو جائے.
حاجی صاحب میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا.
خیر دے، سلامت رہیں.
یہ آپ کی خدمت میں.
انشاءاللہ کہ مبارک ہو.
بہت شکریہ.
آپ کا بھی شکریہ.
خدا حافظ.
آپ کی بات ٹھیک ہے نورانی صاحب، لیکن یہ مسجد عرصے کے بعد دوبارہ ٹھیک ہوئی ہے. لوگوں کو امید ہے کہ اس سال محرم کی مجلسیں دوسری جگہوں کی مجلسوں سے زیادہ اچھی منعقد ہوں.
جناب میرزائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، शहर की दूसरी मस्जिदों में पूरी 10 रातों में न्याज दी जाती है। मुनासिब नहीं कि इस मस्जिद में जो बाजार के ताजिरों के हाथ में है सिर्फ 9वीं और 10वीं को ही न्याज दी जाए।
मैं नजरों न्याज देने का मुखालिफ नहीं हूँ, बस मेरा ये कहना था कि हाजी महदवी साहब की मौजूदगी में ये सब काम होना चाहिए।
जनाब 7 रातों की न्याज मेरे जिम्मे, बाकी 3 रातें आप साहिबान कबूल फरमाएं।
जनाब ये 3 रातों का खर्चा भी ज्यादा आएगा।
जनाब शहीदी साहब आ गए। देखिए मुहर्रम के लिए खर्च करने से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है।
वाह वाह, आपसे मिलने का मुश्ताक था।
आपका खैर मकदम है, रौनक बख्शी।
जहमत दी आपको।
हाजी साहब आपकी करम फरमाई है जो यहाँ पर तशरीफ लाए।
आप साहब इख्तियार हैं, छोटा सा काम था मिर्ज़ाई साहब से, इसलिए आपकी
आप
बातों में दखल अंदाज
हुआ।
आपको इख्तियार है। बहरहाल खुदा ने आपसे मिलने की तौफीक बख्शी। तशरीफ रखिए
मिर्ज़ाई साहब। ये मीटिंग किसी और वक्त के लिए टाल देते।
नहीं, मैंने कहा ना कि 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहरहाल कोई राज की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं।
बैठिए।
या अल्लाह, जनाब मीरजाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मीरजाई साहब, ये कंपनी के सामान की लिस्ट है और ये पैसे जो घर और गाड़ियों को बेचने से हाथ आए हैं, ये हकीकत में आपनुमा कंपनी कर्ज का 1/3 बनता है। 1/3 हिस्सा आपके बेटे आरश के है। जो बाकी बचता है उसके लिए इंशाल्लाह बंदे की जमानत पर कर्ज खाहों से थोड़ा सा टाइम और लेते हैं।
हाजी साहब, घर और सामान बेचने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल अगर थोड़ा सा और सब्र करते, मुरादी मिल जाता और कंपनी का सारा पैसा उससे ले लेते।
नहीं, बहरहाल लोगों को और मुंतजर नहीं रख सकते, और सिर्फ इस बहाने के शायद मुरादी मिल जाए लोगों से और सब्र नहीं करवा सकते। बहरहाल आप मेहरबानी करें, कल कर्ज खाहों के साथ एक मीटिंग रखें ताकि इंशाल्लाह इस मसले को हल कर लें।
1-2 अफराद तो है नहीं हाजी साहब, उनकी तादाद ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में हो पाएगा।
अच्छा, उनके चंद नुमाइंदे भी मौजूद हों तो काफी है। बहरहाल मैं मशहद जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा तो मुहर्रम शुरू हो चुका होगा। दिल में चाहता हूँ अगर मुमकिन हो तो उस वक्त तक ये मसला हल हो जाए इंशाल्लाह।
सबको मेरा सलाम हो।
वाह वाह, अलैकुम सलाम।
जनाब सैयद साहब।
सलाम हाजी शहीदी साहब, मस्जिद दाने को जी कर रहा था, आपकी आवाज सुनने के बाद मेरा चश्मो दिल रोशन हो गया।
आपका चश्मो दिल हमेशा रोशन हो। ये नाबीना है, हम तो नहीं है तो जनाब मिर्ज़ाई मैं मुतमईन रहूं।
आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अर्ज किया है ना कि अफराद की तादाद ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में हो जाएगा।
खैर, उनको अपना पैसा चाहिए, एहतमालन खबर सुनेंगे तो फौरन आ जाएंगे।
जी अच्छा
अच्छा, मुझे माफ कर दें, आपका टाइम लिया, हलाल कर दें मुझे।
थोड़ी देर और रुकते हाजी साहब।
बहुत शुक्रिया,
मैं चलता हूँ आपके साथ।
नहीं जहमत ना करें, आप तशरीफ रखें।
मिर्ज़ाई साहब आइए, मीटिंग की रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए चलिए।
मिर्ज़ाई साहब ने सारी साहब क्या जिम्मे ले ही बासी रखूं।
देखा तुमने मुझे किस तरह फंसा दिया, खासकर ताजिरों के सामने कहा कि मैं ना कर सकूं।
मैं क्या आप कंपनी का 1/3 देना चाहते हैं?
अच्छा तो बाकी 3 रातों के बारे में क्या फैसला किया?
इसलिए कि तुमने मेरे लिए कोई छोड़ा, बावजूद इसके कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे सबसे आखिर में जाके तुम्हारी बातों का पता चलता है।
मैं खुद तुम्हारी खातिर कुछ नहीं बताना चाहता था तुम्हें।
मोहम्मद हुसैन, बार बार इस बात को मत दोहराओ, तुम खुद को अकलमंद समझते हो, किसी के साथ मशवरा ही नहीं करना चाहते हो, जाके मुरादी से मिलते हो लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताते।
मेरे लिए जाल बिछाया गया मायदा, कम अज कम तुम तो समझो।
अगर मुझे तुमने बताया होता तो मैं तुम्हें 1 गलती की तलाफी में 100।
ठीक है, मदद करना चाहती हो?
अब क्या करो मोहम्मद हुसैन, अब मदद करने से क्या फायदा?
ठीक है, तुम सही कह रही हो मायदा, अब्बू जान अम्मी जान इस जगह को बेचकर हमारी खातिर इस जगह से दरबदर हो गए। उनको अगर पता चला कि तुम रूठ गई हो तो वो टूट जाएंगे। 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मुझसे परेशानी है, तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो, ठीक है मैं यहां से रहो पर मुझसे बात मत करो।
कौन है? कौन है?
सलाम।
अलैकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आपसे बात करने के लिए आया हूँ।
आओ अंदर। जब सुना कि मायदा से शादी कर रहे हो तो अपने आप से कहा कि अगर तुम्हारा इखलाक जरा भी अपने बाप पे गया हो तो मायदा के लिए बहुत है।
मैं खुद भी चाहता था कि अब्बू जान की तरह होता, हत्ता कुछ अरसे के लिए मदरसे भी गया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं और अब्बू जान बहुत मुख्तलिफ हैं।
ये तो मुझे लगता है कि हमारे खानदान का रिवाज है कि अपने माँ बाप पे ना जाए। मैं अपने बाप पे नहीं गई, मायदा मुझ पर नहीं गई और तुम अपने बाप पे नहीं गए।
मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि मायदा के लिए एक अच्छी ज़िंदगी फराहम कर सकूं, पर ना हो सका, और अब ऐसी दलदल में फंस गया हूं जिससे निकलना मुश्किल है।
अरे बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, खुद मुझे ही देखो।
आपका किस्सा मुख्तलिफ है। आप जब जलील साहब से जुदा हुई और ईरान से चली गईं तो आपके पास इंतखाब के लिए कई रास्ते थे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया है और उसी पर चलना है। मैंने फैसला किया है कि जाके खुद को पुलिस के हवाले कर दूं।
कोई चारा नहीं है तो क्या बदतरीन रास्ते का इंतखाब करोगे?
और कोई चारा भी तो नहीं है। सोचता हूँ मेरे इस इकदाम से शायद वो मेरी बातों पर यकीन कर लें।
ये बेवकूफाना रास्ता होगा। अगर खुद को पुलिस के हवाले करोगे तो वो समझेंगे कि सारा कसूर तुम्हारा है।
आप तो इस अंदाज से बात कर रही हैं जैसे, तो आप बताइए ना मैं क्या
करूं? तो आके हमारे साथ रहो।
कब तक रह सकता हूँ, ये कैसे मुमकिन?
जब तक मुरादी का पता ना चले।
मुरादी अब मिलने वाला नहीं है।
तुम कैसे इतने मुतमईन हो?
नहीं जानता।
दुआ करो इससे पहले कि पुलिस तुम्हारे पीछे आए मुरादी को ढूंढ सको। मैं कल मकसूदी के पास जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है।
बेदमिश का शरबत है, ऐसा आपके लिए मुफीद है, पी लें।
मेरे आसाब ऐसे नहीं ठीक होंगे।
मैं भी ऐसी ही चीजों से अपने पांव पर खड़ी हूँ। इतने अजीबोगरीब केस आते हैं कि क्या कहूँ।
एक बात साफ साफ बताओगी, मेरे दामाद का इन अजीबोगरीब केसेस से जो तुम्हारे हाथ में है क्या ताल्लुक है?
मैं शुरू से ही जब जमीनों की कानूनी हैसियत की तब्दीली के लिए रिश्वतखोरी से आगाह हुई तो इस केस में एक बा असर फर्द की तलाश में थी। मोहम्मद हुसैन साहब भी मारूफ इंसान थे, हाजी शहीदी के बेटे होने के नाते बहुत कुछ कर सकते थे।
तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते?
तहकीकात से पता चलता है कि उन्हें कुर्बानी बनाया गया है। इस केस के ताने बाने जमीन खोरों के एक बड़े गिरोह से मिलते हैं जो नाजायज मालूमात हासिल करके कीमत बढ़ने वाली जमीनों को खरीद लेता है।
तो अगर इस केस के पीछे इतने बा असर अफराद हैं तो इस बीच मोहम्मद हुसैन क्यों रगड़ा जा रहा है? ये तो नेक लोग हैं, ठीक काम कर रहे थे।
हत्या के जायज काम के लिए भी आंखें खुली रखनी चाहिए। तुम्हारे दामाद की खानदानी हैसियत ऐसी है कि उन्हें ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है।
आप क्या किया जा सकता है, तुम क्या कर सकती हो?
उनसे कहो जो कुछ जानते हैं यहाँ आकर बताएं।
गिरफ्तार तो नहीं करवाओगी?
नहीं तो।
तुमसे एक दरख्वास्त है।
बोलो।
किसी को पता ना चले मोहम्मद हुसैन ने तुम्हें कुछ बताया है।
शरबत पियो, गर्म हो गया।
क्या कहती? कहती है धोखा खा गए। शहीदी साहब के बेटे होने की वजह से तुम्हारी बेखबरी में तुमसे नाजायज फायदा उठाया गया।
कौन सा नाजायज फायदा? हाजी साहब ने तो कहीं एक बार भी हमारी हिमायत नहीं की। लोन लेना चाहता था, उन्होंने जमानत तक नहीं दी हमारी।
शहीदी फैमिली से ताल्लुक होना ही काफी है कि कोई तुमसे नाजायज फायदा उठाए। कहती है अगर उम्र कैद ना हुई तो यही बहुत बड़ी बात होगी।
समझ रहा है, मैंने ऐसा कौन सा देने का इल्जाम साबित होता है तो 4-5 साल जेल जाना पड़ेगा, बस और क्या हो सकता है।
मसला इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। कुछ ऐसी बातें थी कि मैं नहीं समझी, लेकिन अगर सच कह रही हो तो बहुत बुरा होगा।
क्या मतलब? वो क्या कह रही थी?
तुम मकसूदी के लिए लैंड माफिया के एक बड़े गिरोह का एक क्लू। हमें इसी के पास जाना होगा।
किसके? मकसूदी के पास?
हाँ,
मैं जानता हूँ उसके लिए दोस्ती उस्ती कोई मायने नहीं है, सिर्फ काम अहम है।
बहरहाल अभी उनके पास जाना होगा, तुम अभी तैयार होके आ जाओ। जाओ ना।
यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं जिससे पता चले कि बात क्या है।
तो क्या करें?
कुछ नहीं, अपने मोहतरम दामाद से पूछें।
यकीन कर लें, पहली दफा उसको यहीं देखा था। दोबारा जब उसको सबक सिखाने आया तो वो भाग चुका था।
माशाल्लाह, क्या कहने हैं, आप खुद ही मुद्दई और खुद ही जज बन गए। गोया किस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है।
हम चाहते थे कि मसले को किसी न किसी तरह हल कर दें ताकि बात रुसवाई तक न पहुंचे।
अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही का इतना यकीन था तो उसी वक्त जाके पुलिस को बता देते कि पैसे अकाउंट में डालने का असल किस्सा क्या है।
अगर ऐसा करता तो फौरन गिरफ्तार हो जाता।
की गिरफ्तारी मुलजिम के फरार होने से बेहतर
क्या करें?
कुछ नहीं किया जा सकता, जाके खुद को हवाले कर दो।
आइए, ये बाग बाजार के एक बाअसर फर्द अली रजा हाफिजी के नाम है।
उसका कोई केस है?
नहीं, कैसा केस, आइए, मैं खुद उसको अच्छी तरह जानता हूँ। लोग बाजार में उसके नाम की कसम खाते हैं। मोतबर भी है और खैर खैरात वाला भी है।
तो उसको कैसे नहीं पता कि मुरादी जाके उस बाग में छिप गया है?
अगर वो वहाँ गया हो
तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या?
आप तो नहीं, लेकिन खबर के जराये झूठ हो सकते हैं।
मेरी खबर का जरिया मोहतबर है, मुझसे वादा लिया है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगी, सिर्फ मालूमात पहुंचाऊंगी।
दिलचस्प है, इस फाइल में कुछ ऐसे जराए हैं जो मोहतबर हैं लेकिन खुफिया हैं, और ये बतौर मेहरबानी हमें खबर दे रहे हैं।
तो क्या आपके पास भी मोहतबर जरिया है?
जी हाँ, लेकिन मुझे खुद आगे बढ़कर काम करना होगा ताकि मैं देखूँ क्या कुछ कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा, मिर्जाई साहब मस्जिद में हैं?
जी हाँ, मिर्जाई साहब मस्जिद में हैं।
तुमको पता है मिर्जाई साहब कहाँ हैं?
क्या बुला लूं उनको?
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मिर्जाई साहब, आपसे कोई मिलने आया है?
आता हूँ।
सलाम।
वही वाह कर्नल साहब, कैसे हैं आप?
ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है।
ये देख, सीढ़ियों बना रहे, उनको कमरे के पीछे रखवा दो। मुझसे कोई काम था?
थोड़ी देर पहले मैं हाफिजी साहब के पास गया था, बाग के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो आपको बेच चुके हैं।
हाँ, 8-9 महीने पहले खरीदा था, लेकिन अभी तक इंतकाली नहीं हुई है। लेकिन क्यों?
दरअसल हमें कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मिली थी कि मुरादी वहाँ कुछ दिनों के लिए छिपा हुआ था।
यानी फरार होने के बाद वहाँ गया था?
ऐसा ही लगता है।
कितना अय्यार मक्कार है, ऐसी जगह गया है कि किसी के वहमो गुमान में भी ना आए।
वो कैसे?
मुरादी ने तकरीबन 6 महीने पहले वो जगह मुझसे किराए पर ली थी।
इसी तरह जबानी?
नहीं, देकानी साहब के एजेंसी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवाया।
क्या मैं देख सकता हूँ?
यानी आपको मुझ पर यकीन नहीं है?
नहीं, बस इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ।
नहीं ना, यकीन नहीं है। ठीक है, मेरी दुकान पर चलते हैं, वहां मैं आपको कागजात दिखा दूंगा। तुम लोग कहीं नहीं जाना, मैं चावल घी लेकर अभी आता हूं। ये लीजिए।
आपने कहा 1 साल के लिए किराए पर लिया था?
कर्नल साहब, आपने मेरी बात पकड़ ली। हाँ, 1 साल के लिए किराए पर लिया था, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। 6 महीने गुजर चुके हैं, यानी 6 चेक वसूल हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो अपने अकाउंट की प्रिंट लेके दिखा दूं।
इस बाग को किस लिए किराए पर लिया था?
क्या बताऊं, उस वक्त बाग की हालत ठीक थी, कभी कभी फैमिली के साथ और कभी अकेले वहां जाया करता था। मुरादी, खुदा तुम्हें समझे, मेरी इज्जत बर्बाद करती। पता नहीं इस लड़के पर क्या मुसीबत नाजिल हुई थी, जो इतने बाइज्जत घराने में से है इस तरह का निकल गया।
इतने साल उसने आपके साथ काम किया, कैसे नहीं समझ सके कि वो भरोसे के काबिल नहीं है?
उसने मेरा नमक खाया है, क्या इंसान इतना भी बेशर्म हो सकता है? मैंने उसके साथ नेकी की और नतीजा ये निकला। हुँ।
السلام.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
حاجی صاحب لے آیا ہوں.
بہت شکریہ. یہی مجید اس کا بھائی بے روزگار تھا, فوجی خدمت سے واپس آیا تھا. میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور یہاں لے آیا.
مسجد کے باہر انتظار ہو رہا ہے, جائیں جا کر مسجد کے چاول اور گھی کا انتظام دیکھیں.
تو کیا آپ نہیں آ رہے ہیں؟
میں آپ کے اس ملازم سے کچھ سوال پوچھ کر آتا ہوں.
جناب کرنل جہانگیری, حاجی علی بھائی, آپ مجرم کو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں اپنے 10-12 سال کے دوست کی دکان میں؟
آپ پریشان ہیں؟ آپ نے خود کہا تھا یہاں آنے کے لیے. میں تو صرف باغ والا معاملہ سمجھنا چاہتا تھا, جو اب میں پوری طرح سمجھ گیا. کیا میں اس کو پولیس اسٹیشن لے جا کر سوالات کروں؟
نہیں, یہیں صحیح ہے. مجید.
جی جناب.
میرا کوٹ لے کر آؤ. میں چاہتا ہوں آپ آخر تک جائیں, ہر کونے خدرے میں ڈھونڈیں, شاید آپ کو کوئی اس سلسلے میں سراغ مل جائے. مجید اس کو تجوری میں رکھ دو, آؤ بیٹھو اور کرنل صاحب کے سوالوں کا جواب دو تاکہ یہ مطمئن ہو جائیں. خدا حافظ.
تمہارے بھائی نے ایسا کیوں کیا؟
نہیں معلوم, اصل میں میرے بھائی کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس کا ایک ذاتی گھر ہو. یعنی ہمیشہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تنخواہ جو میں اٹھاتا ہوں, اگر میں 7-8 سال تک کچھ خرچ نہ کروں تب ایک معمولی سا گھر خرید پاؤں گا.
کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ رشوت دے کر دوسروں کو دھوکہ دے؟
نہیں جانتا, میں نے اس مسئلے پر زیادہ غور نہیں کیا, نہیں بتا سکتا کہ اس کا کام صحیح تھا.
اتنے لوگوں کو برباد کرنے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ان دنوں میں تمہارا اس سے رابطہ نہیں ہوا؟
جی نہیں.
کوئی ملاقات, ساتھ میں کھانا وغیرہ؟
جی نہیں.
فون سے رابطہ؟
بالکل نہیں.
میسج یا ای میل وغیرہ؟
کچھ نہیں.
تم اپنی اس طرز فکر کے ساتھ اس بارے میں تمہیں کوئی خبر ہوئی تو ہمیں بتاؤ گے یا اس کی طرفداری کرو گے؟
میرے بھائی نے محلے میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے. میری امی محلے میں کسی سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہی ہیں.
تو پھر میں انتظار کروں؟
ٹھیک ہے, اگرچہ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن یقین کریں کہ اگر کوئی خبر ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا.
امید ہے ترک نشہ اور امامہ و ابا اور تربیتی کام کے بہانے کا قصہ دوبارہ تکرار نہ ہو.
جی.
اس وقت میں نے جناب مہدوی صاحب کی وجہ سے تمہیں چھوڑا, ورنہ گرفتار کروا سکتا تھا.
سلام.
کیسا سلام محمد حسین؟ ڈاکٹر صاحبہ سلام عرض ہے.
کیا ہوا داؤد صاحب؟
ڈاکٹر صاحبہ تو باہر تھیں, ان کو یہاں کے حالات کا نہیں پتا. تم تو یہاں پلے بڑے ہو, کیوں بے وقوفی کی حرکتیں کرتے ہو؟
آپ تو یہیں پلے بڑے ہیں, آپ بتائیے کیا ہوا ہے.
آپ اتنا بھی نہیں جانتی, اتنا بھی نہیں جانتی میں کس بات پر پریشان ہوں. اتنا بلا سوچے سمجھے ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہیں کہ کام خراب ہو جاتا ہے.
آپ محمد حسین کے مسئلے میں اتنا بیکار بیٹھے رہے کہ ہم خود ہی کچھ کرنے پر مجبور ہوئے.
میں بیکار ہی ٹانگ اڑا رہا ہوں. محمد حسین کچھ وصیت وغیرہ کرنا ہو تو کر لو, کیونکہ ایک لمبی مدت کے لیے جیل جانے والے ہو.
داؤد صاحب بتا بھی دیجیے کہ کیا ہوا ہے.
بندے خدا, تم نے کس لیے جا کے پولیس کو بتایا؟ کیوں بھنڈوں کے چھتے کو چھیڑا؟ پولیس کو تو تم سے کوئی کام نہیں تھا, خامخواہ جا کے ان کو چھیڑ دیا. بتاؤ مجھے.
کون سی پولیس؟ میں اپنے دوست سے ملنے گئی تھی.
معاف کرنا, تمہاری یہ دوست سرکاری وکیل ہے؟
نہیں, تحقیقاتی ادارے میں کام کرتی ہے.
انسان کو صرف وکیل, ڈاکٹر یا مستحد سے اپنا راز بیان کرنا چاہیے. کون سی دوست محترمہ؟ چند دن اسکول میں ایک بینچ پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محمد حسین کے لیے فکر مند ہو. یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. آج کسی بڑے شہر اور کل دارالحکومت کو ٹرانسفر ہونے کی سوچتے ہیں. 2 دن, صرف 2 دن مرادی کو ڈھونڈ میں لگایا ہوگا, پھر سوچا ہوگا کہ کیا کیا جائے جو ہنگامہ ہو. یہ سوچا ہوگا کہ ایک بنیادی کام کیا جائے, اس لیے حاجی شہیدی کے بیٹے کو پھنسا دیا. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تم بھی بہت سیدھی سادی ہو. یہ دوستیاں اور فداکاریاں ہمارے بچپن کے زمانے کی باتیں ہیں, اب یہ ختم ہو چکی ہیں. اگر کچھ باقی تھا تو وہ بھی مرتضیٰ کے ساتھ چلا گیا. انسان کو صرف اپنے رشتہ داروں پر اعتماد کرنا چاہیے, لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سب اس دلدل سے صحیح سلامت نکلیں تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا, تب جا کر میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. میری جتنا मेरे जितना किसी को भी ये मुश्किल हल करने की फिक्र नहीं होगी। मैं इस बारे में आरिश की कसम खाता हूँ।
हमने भी अगर उन्हें कुछ बताया तो ये सोचकर कि शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें।
अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो मुझे हर चीज से मुत्तला रखो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
उठो उठो ज्यादा मातम करने की जरूरत नहीं है।
सलाम जनाब, माफ कीजिएगा देर हो गई।
अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया?
कुछ नहीं, मामूली किस्म के सवालों जवाब।
ओहो,
उन्होंने कोई खास बात नहीं पूछी जनाब।
ये खास चीज ना पूछना 100 सवालों से बदतर है। इन्हीं गैर मुतालिका बातों के दरमियान से वो अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता।
नहीं जनाब, मेरा ध्यान था।
अब बताओ अभी क्या पूछा?
मिर्ज़ा साहब, आपकी बात काट रहा हूँ।
कोई बात नहीं,
मुझे जल्दी से मदरसे पहुंचा सकते हैं, देर हो गई है।
जी, इतनी जल्दी क्यों हाजी साहब?
हाजी शहीदी साहब का दरसे अखलाक है, मैं फोन पर बातों में मसरूफ था, बिल्कुल भूल ही गया, बहुत ज्यादा देर हो गई।
मुझे अकबर अब्दी का एक पुराना ड्रामा याद आया जिसमें वो बोरी कंधे पर लेकर फिरता था।
फिर स्कूल जाने में देर हो गई। इत्तेफाक से मुझे खुद भी वही ड्रामा याद आ गया।
जी हाजी साहब, जाओ हाजी साहब को पहुंचा।
इजाजत दें, खुदा महफूज रखे।
मजीद।
जी जनाब।
ये लो।
ये क्या है?
गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है।
मेरे पास तो अपनी गाड़ी है।
ये भी तुम्हारी है? मेरे पास अपनी गाड़ी है और वो भी ठीक है। एक 0 मीटर गाड़ी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे ख्याल में ये किसके लिए खरीदी है?
लेकिन
जाओ मजीद, हाजी साहब को देर हो रही है।
क्या है मजीद साहब, तुम किस फिक्र में खोए हुए हो?
कोई बात नहीं हाजी साहब, बस आपकी बात ने मेरे जहन को थोड़ा मसरूफ रखा हुआ है।
मैंने तो कुछ नहीं कहा।
अभी बहुत जल्दी है कि मुझे ऐसी गाड़ी दी जाए।
तुम ही तो कह रहे हो कि मिर्जाई साहब ने ये तुम्हारे लिए खरीदी है, तो जरूर तुम में कोई कमाल देखा हो खरीदी है।
नहीं जानता हाजी साहब, लेकिन उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ताजिरों के बकौल वो मुझ पर एहसान करना चाहते हैं।
भाई मजीद, इंसान जब कोशिश करता है और हलाल तरीके से रिस्क कमाता है तो फख्र के साथ उसको दूसरे मोहताज अफराद पर खर्च करना चाहिए। मीरजाई साहब तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें किसी और की करनी चाहिए। इमाम सादिक फरमाते हैं, इंसान के हर नेक काम के लिए एक मुवक्किल होता है। नमाज, रोजा, हज, जिहाद और इस तरह के आमाल वगैरह उन्हीं फरिश्तों के जरिए आसमान तक जाते हैं और कुर्बे इलाही तक पहुंचते हैं। सिर्फ सदका और इन्फाक ही ऐसी चीज है जो बगैर किसी वास्ते के खुदावंदे आलम तक पहुंचती है। आप पैसा कमाएं और अल्लाह की राह में खर्च करें, कोई एतराज नहीं करेगा। और हाँ, तुम्हारे इस दोस्त अब्बास का क्या हुआ?
हाजी साहब, जितना कहता हूँ नशा छोड़ने का ये तरीका सही नहीं है, वो मान ही नहीं रहा।
यानी दोबारा उसे तहखाने में बंद कर दिया?
जी हाँ।
मजीद साहब, लगता है तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हो।
अरे हाजी साहब, मैं तो रोजाना आपकी तकरीर सुनता हूँ।
ये बहुत ही पुराने और रिवायती तरीके हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
यकीन करें, जितना भी इससे कहा कि आओ हाजी साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं।
हाँ, जरूर कहा होगा कि मौलवियों के इस काम से क्या
ताल्लुक। तकरीबन ऐसी ही बात कही थी।
ये बताओ कि उसके वालदेन को पता है?
अफसोस कि उसकी माँ को तो पता है, लेकिन बाप नहीं है।
क्या मतलब? कि खुदा को प्यारे हो गए?
नहीं, अब्बास 4-5 साल का था तो उसके माँ बाप अलग हो गए थे।
पहले तो ये कि ये अब्बास साहब आखिरकार कुछ मराहिल तय करने के बाद मनुष्यात के आदी हुए होंगे। दूसरे ये कि नशा करने का पहला सबब हमेशा नफसियाती और जाती नहीं हुआ करता, बल्कि इसके बरखिलाफ होता है। हो सकता है कि ये किस्सा माहौल और घराने से शुरू हो। सबसे पहले अब्बास को हालात की संगीनी का एहसास करना होगा ताकि नशे से निजात की कोशिश शुरू करे। मतलब समझे?
क्या मतलब?
मतलब ये कि जैसे कि उसने अपने अंदर नशे के मुहरिकात पैदा और मजबूत किए हैं,
अभी उसको नशा छोड़ने के मुहर्रिक को अपने अंदर मजबूत करना होगा।
अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपको तो बहुत कुछ आता है।
और क्यों मजी साहब, ऐसा ही है। तुमने मुझे अभी समझा ही कहाँ है। हकीकत यही है।
खिलकत का कानून ये है कि अगर आप दुनिया पर मालकियत का एहसास नहीं करेंगे और दुनिया को कम चाहेंगे तो वो और ज़्यादा आपके पास आएगी। एक और इलाही सुन्नत आजमाइशात और मसाइब की सुन्नत है। करबला का वाकया इलाही इम्तिहानात और मसाइब से भरा पड़ा है। शायद ही कोई इंसान हज़रत ज़ैनब कुबरा की तरह इतने बड़े इम्तिहानात से सुरखरू निकल सके। तशरीफ़ रखें।
शुक्रिया।
सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो इम्तिहान के जिस बीबी ज़ैनब ने सिर्फ आधे दिन के अंदर अपने ख़ानदान के बेहतरीन जवानों और अजीज़ो दिलबंद बेटों को खो दिया, वो इतने बड़े इम्तिहान से गुजरी, लेकिन ना सिर्फ ये कि अपने परवरदिगार से बदगुमान नहीं हुई बल्कि यजीद के दरबार में फरमाया, मा रईतो इल्ला जमीला। कितना सब्र था उन अजीम बीबी। खुदा के फजल से इस साल हमें तौफीक नसीब हुई है कि एक फाजिल और तजर्बाकार मुकर्रर हमारे दरमियान तशरीफ लाएं, जो तुल्लाब तबलीग के सिलसिले में कम तजुर्बा याफ्ता हैं, वो जनाब महदवी साहब से मुराजिया करें और उनके तजुर्बों से इस्तेफादा करें। या रब, हमारे दिलों को मोहब्बत की रोशनी से महरूम ना फरमा।
हाजी साहब इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज़।
खुदा
हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
तुम कहाँ जा रहे हो?
मुस्लिम जाना मत, एक मिनट यहीं पर रुको, काम है।
मुस्लिम, जरा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे काम है।
रुको, मैं भी आता
हूं। रुको तो सही।
मैदी साहब, एक मेहरबानी करेंगे?
जी बोलिए।
आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और मदरसे से चले जाएं। आप दोनों से बोल रहा हूं।
मुस्लिम साहब, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, यहाँ पर ये सब बातें करने का मौका नहीं है। हम यहाँ पर चार रकअत नमाज पढ़ते हैं, नहीं चाहता कि शुबा पैदा हो।
आप इतने पाक हैं कि नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जाइए, तशरीफ ले जाइए।
बिल्कुल मुफीद और मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मुहर्रम और सफ़र की आज़ादारी के अय्याम में तबलीग की ज़रूरियात में से गलत और खुराफात और गैर मुस्तनद बातों से परहेज़ करना है, और इमाम हुसैन की आज़ादारी के आला मारिफ और तालीमात का बयान करना है। हमें चाहिए कि आशूरा के वाक़े के बारे में लोगों की शिनाख्त में इजाफा करें। आप तवक्कुल भी करें और तवस्सुल भी करें, लेकिन अफसोस के साथ कि बाज़ मौलवी सिर्फ लोगों को रुलाते हैं।
उस्ताद माफ़ कीजिएगा, अश्को गम ज़रूरी है या करबला की रज़मिया दास्तान?
मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा तबलीग के लिए गया था
जी,
ये मेरे लिए बहुत अहम था कि मैं ऐसे मसाइब पढ़ूं जो सबको रुला सके। इसीलिए मैंने बाज़ अल्फाज को हाईलाइट किया था और अरबी इबारत पर ज़ेर ज़बर लगाया था। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मुहर्रम की उन्हीं इब्तदाई रातों में एक रात जो ही मैंने पढ़ने के लिए गला साफ किया, बिजली चली गई और वहां अंधेरा हो गया। अब जिस कागज पे मैंने मखसूस पॉइंट को हाईलाइट किया था वो नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो रात मैंने किस मुसीबत में गुजारी खुदा जानता है। वो बड़ी अजीब रात थी जिस पर मैं खुद ही हंस रहा था। अब इजाजत दें मैं असल मतलब बयान करता हूं। ये अश्क और मातम सिर्फ अश्क मातम नहीं है। इमाम हुसैन की मजलिसें, इमाम हुसैन की आजादारी की मजलिसें जुल्म के खिलाफ मजलिसें हैं, तसल्लुत के खिलाफ मजलिसें हैं, जमाने के यजीदों, शिमरों और इब्ने ज़ियादों के खिलाफ मजलिसें हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी ना सिर्फ शियों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि दुनिया के तमाम आजाद लोगों के लिए एक सबक है। मुस्लिम साहब क्या बात है, जो स्प्रिंग की तरह उछल रहे हैं, कूदे जा रहे हैं।
हाजी साहब मेरे ख्याल से आप जमाने के शक्काक लोगों के बारे में भी कुछ कहें।
जी जरूर।
हाजी साहब मसला इससे कहीं ज्यादा हसास है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यहाँ को गजबी समझते हैं पहले उनके बारे में वजाहत हो जाए, उसके बाद दरसो मुबाहिसा शुरू करें।
जनाब मुस्लिम मेरे भाई, इन खुदा के बंदों के दिलों में शक और सवाल पैदा हो गया है। किसी के सवाल का जवाब इतनी तुंदी से नहीं देना चाहिए मेरे भाई।
हाजी साहब ये शुभा नहीं है, ये नमक हरामी है।
जिस तुंदी से आप पेश आ रहे हैं ऐसे में अपने दिल की बात कहने की कौन जरूरत कर सकता है भला, बताइए मुझे।
हाजी साहब क्या इजाजत है कि मैं एक सवाल पूछ सकूं?
ये लीजिए, देखिए, ऐसे सुकून और आराम में बहस को आगे बढ़ाने को जी करता है, फरमाइए।
हाजी साहब अगर फर्ज करें हिबा का मसला सही ना निकले और आखिरकार साबित हो जाए कि हाजी हबीब के वरसा की बात सही है, तो क्या हम शरई लिहाज से जिम्मेदार हैं?
नहीं।
तुम क्या कह रहे हो शेख फरीद?
एक सवाल है
जनाब। फर्ज करें कि ये बात साबित हो जाती है, हमें तो पता नहीं था कि बात क्या है। क्या पता था?
मैं ये कहता हूँ कि ये जो बाज असातीद के जहन में आया है कि हाजी शहीदी साहब ने गफलत की है, ये सोचते हुए उन्हें शर्म नहीं आई?
अरे भाई हाजी महदवी साहब, आप भी इस बहस को बंद कीजिए। हम लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, हमें दूसरे मौजूदात पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
वल्लाह मुझे हाजी शहीदी साहब के अमल पर किसी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी तो मासूम नहीं है, शायद नाखास्तगी में उनसे कोई गफलत हो गई हो।
हाजी साहब आप तो खुद बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जब हजरत अली ने मेहराब में जरबत खाई तो बाज लोगों ने कहा कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे?
मुस्लिम साहब तुम्हारी ये बात यहाँ पर मौजूदियत नहीं रखती, क्योंकि यहाँ जितने भी अफराद हैं उनको हाजी शहीदी साहब के ईमान, अकीदे और सच्चाई पर कोई शक नहीं है।
हाँ बिल्कुल शक नहीं।
लेकिन उनको ये तो हक हासिल है ना कि वो सवाल पूछ सके।
सवाल पूछें, लेकिन हाजी शहीदी साहब के काम पर एतराज ना करें।
जी जरूर, लेकिन यहाँ पर किसी का ये मकसद भी नहीं है। आप बेहतर है पहले की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें, खुदा ना ख्वास्ता कोई गफलत हुई भी हो तो किसी की गर्दन पर कोई कर्ज नहीं है। जी आप लोग तशरीफ ले जाएं।
या अल्लाह।
ऐ मेरे खुदा।
क्या हुआ?
देखो ये क्या लिखा है।
हाजी साहब
हेलो। बरात अली तुम्हारे पास इंटरनेट है?
मोहम्मद हुसैन तुम्हारा फोन है।
शुक्रिया। हेलो।
हेलो मोहम्मद हुसैन, इंटरनेट से कनेक्ट हो?
हाँ लेकिन क्यों?
रुको बताता हूँ।
क्या हुआ बरात अली?
जरा नेट तो खोलो।
जरा एक मिनट रुको, माफ कीजिए मैं जरा इसको ले लेता हूँ। हाँ बोलो।
कंप्यूटर पे बैठे हो?
हाँ बताओ।
durinnews.com पे जाओ। चलेगा?
होल्ड करो होल्ड करो। खुल नहीं रहा है बरात अली, तुम बोलो।
लिखा एक मारूफ आलिम का बेटा लैंड माफिया के केस के बाद कुछ नफीस कालीनों को स्मगल करना चाहता था कि पुलिस की होशियारी से वो पकड़ा गया और पुलिस ने इस मामले में आलिम के बेटे से पूछताछ शुरू कर दी।
क्या हुआ?
हेलो
क्या हुआ?
ओह 8 ज़िलहिज को मक्के से इमाम हुसैन के निकलने का सबब क्या था? काफी तादाद में लोग हज के आमाल अदा करने आए हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम और मुकद्दर साज मिशन के आगाज के लिए बेहतरीन वक्त था। ताकि इस सफर के मकासद के बारे में लोगों की सही तरह से इत्तला रसाई।
मैं आता हूं अभी।
ठीक है।
यानी इमाम ने उस जमाने के तमाम तबलीगी वसाइल से फायदा उठाया, हत्ता उनकी हरकत का वक्त भी तयशुदा था। वो अपने खुतबों में फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं कि जहां मुझे कत्ल किया जाएगा भेड़िये मेरे बदन के एक एक टुकड़े को अलग कर रहे हैं और उससे कोई मफर नहीं। मैं खुदा के इम्तिहान पर साबिर हूं और वो मुझे पूरा अज्र देगा। तो जिसको ईसार करना है और अपनी जान की कुर्बानी देनी है हमारे साथ आए। तो जान लो कि मैं कल यहां से हरकत करूंगा।
बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
जाओ जाकर बोल दो कि मैं आता हूं।
क्या मतलब है
लोगों के इतने अजीम इज्तिमा के सामने खड़े होकर कहना कि मैं जा रहा हूं ताकि मारा जाऊं? नबी का नवासा लोगों से मदद मांगे और कोई उनका हाथ ना पकड़े। इमाम ने चुपके से लोगों से नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं ताकि मारा जाऊं, बल्कि ऊंची आवाज में ऐलान किया, सदा दी के सब सुने, ताकि कयामत के दिन कोई ना कह सके कि मैंने नहीं सुना था या मैं मुतवज्जे नहीं था। कल इंशाल्लाह इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक सलावत। शायद अब तक सबसे दर्दनाक तरीन और गम अंगेज तरीन मजलिस जो मैंने सुनी है वो मसाइब हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं और ज़ियारत नाहिया मुकद्दसा के नाम से मशहूर हैं। सलाम हो उस बे यारो मददगार मुदाफे पर, सलाम हो उन खून में खिजाब शुदा महासिन पर, सलाम हो उस खाक आलूदा रुखसार पर, सलाम हो उस बदन पर जिसका लिबास लूट लिया गया। हुसैन से इश्क मैंने उस छोटी से बच्ची से सीखा है कि जिसने करबला के मंजर में सूरज को स्याह बनाया था ताकि शोदा के बदन धूप के नीचे ना जले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
اینجا برای سنوشتن هوا کمه